सूरज की पहली किरण जब निकलती है तो साथ में एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद और आरज़ुओं को पूरा करने की नवेद देती है, और उसमें ये होता है कि आदमी सोचता है कि हाँ, आज हम बहुत सारे काम कर बैठेंगे यकीनन, चाहे वो काम ना हो लेकिन ज़रूर करने की कम से कम कोशिश करेंगे। तो ये खुदा की तरफ से एक नेमत है हम लोगों के लिए कि ये उसने हम लोगों के दिलों में एक सूरज की किरण के ज़रिए उम्मीद डाल दी। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपको अपने प्रोग्राम में यानी आपके प्रोग्राम में सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद कहता हूँ।
जी, मैं भी सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, आप लोगों की खिदमत में, सब लोगों की खिदमत में। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और जो है खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत खूबसूरत नाम से कर चुके होंगे
इंशाल्लाह।
और हमारा हफ्ते का मौजू चल रहा है तब्दीली।
हाँ बिल्कुल,
एक चीज़ जो मैं इसके बारे में तब्दीली के बारे में सोच रहा था, बारा वक्त कम है हमारे पास शुरू से ही, लेकिन ये कि बताता चलूँ कि अक्सर तब्दीलियाँ लोग अक्सर तब्दीलियों को जो है कबूल नहीं करते।
हाँ,
कहने
ये
का
तो
मतलब
है,
ये कि कोई तब्दीली अगर शहर में आपके रहने वाली जगह पर या आपके काम करने वाली जगह पर हुई है, शायद वो मुस्बत भी हो, तो लोग अक्सर हम लोग जो है उसको एक जो है कोशिश करते हैं कि वो वापस हो जाए। ऐसा क्यों है? हम नफ्सियात है हमारी ये?
बिल्कुल, इसमें हम लोगों की नफ्सियात का ही असल किरदार है। यानी इसमें कहा जाता है इस सिलसिले में कि इंसान हमेशा एक सुकून की हालत में रहना चाहता
सही
है,
है,
और अपनी जगह से ज़्यादा वो नहीं करना चाहता है बिल्कुल। यानी जब तक वो जो फिज़िक्स के कवानीन के मुताबिक के जब तक एनर्जी वो ना हो तो आप
ठीक
फिर
है,
रिएक्शन नहीं दिखाएंगे।
सही,
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप रिएक्शन कोई दिखाएं,
ठीक
और
है,
अगर आप रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं इसका मतलब है कहीं एनर्जी आपको मिल ही नहीं रही है
मिल ही
कहीं
नहीं रही,
से। तो
ठीक है,
इस लिहाज
सही
से एक छोटा सा काम कर सकते हैं हमारे नाज़रीन, और वो
जी
ये है कि कम से कम
जी
छोटी से छोटी तब्दीली ये है अखलाक इन सब की, तो आपको करना ही करना है, लेकिन घर में हर थोड़े दिन के बाद सोफ़ा उठा के इधर से वहाँ रख दें।
ठीक है,
यही छोटी सी तब्दीली बहुत
असर
यानी
करती है
जहन पर एक बहुत ही अच्छा असर डालती है।
बिल्कुल। घर की सेटिंग तब्दील करने के
ज़्यादा
बारे
वक्त
में
नहीं है हम लोगों
पहले
के
भी
पास में।
जी बिल्कुल आपने पहले भी बात की थी, और एक बहुत मुस्बत असर पड़ता है इंसान पर। ऐसा लगता है जैसे घर जो है वो नया हो गया, या
बिल्कुल
यही कि शीट तब्दील कर दी, किसी और रंग की शीट चढ़ा दी बेड
हाँ,
पे या सोफे पे, जैसे
इसके
इबारत
बारे में
के।
और बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह
जी
बताऊंगा नाजरीन को भी। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमसे आप कैसे रابطہ कर सकते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दौरान भी आपके कमेंट्स के मुंतज़िर हैं हम फेसबुक पर, और बहरहाल खुर्रम भाई और हम भी मौजूद हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए, और एक और अजीज़ मेहमान बहुत थोड़ी देर में हम लोगों को ज्वाइन करने जा रहे हैं। खुर्रम, आप
बिल्कुल
बताइए
जी,
किस चीज़ के बारे में और क्यों ज्वाइन कर
बिल्कुल
रहे हैं।
जैसे कि हसन कल भी हमने बताया था और आपको भी पता है, हमारे प्यार नाज़रीन को भी पता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो एक बहुत अजीम शायर रहे हैं ईरानी तारीख़ में, सिर्फ ईरानी तारीख ना कहूँ तो बेहतर रहेगा, तारीख के एक बहुत मशहूर शायर रहे हैं, उनका आज दिन मनाया जा रहा है। ईरान में मौलवी के नाम से भी वो मशहूर हैं,
बिल्कुल
और उसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने शब्बर साहब को आज जो है अपने स्टूडियो में दावत दी है।
मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में बहरहाल जो चीज़ें मौजूद हैं
जी
वो एक तो बहुत सारी जो अजीम शख्सियात होती हैं हर एक जो है वो अब खुद से मंसूब करने की, अपने मुल्क से मंसूब करने
जी
की, अपने इलाके से मंसूब करने की कोशिश
कोशिश
करता है
करते,
उसे।
सही ठीक,
मिसाल के तौर पर इनको मौलाना जलालुद्दीन बल्खी भी कहा जाता है। बल्ख
अच्छा
जो है वो बिल्कुल दूसरे तरफ है, यानी सेंट्रल एशिया में,
सही है,
वस्ती एशिया में, और रूम जो है बहरहाल क्योंकि
रूम
तुर्की का बहरहाल उस
बिल्कुल
ज़माने में हिस्सा था, तो वहाँ पर वो भी अपने खुद को मंसूब, ईरानी खुद कहते हैं कि वो ईरानी थे,
ठीक है,
और ये दिखाता है कि अजीम शख्सियात कितनी मौसर होती हैं
कि हर
हम लोगों
कोई
की ज़िंदगी में, और हम लोग कोशिश करते हैं कि खुद से उनको
उनको
करीब
जोड़ लें।
करें।
बिल्कुल,
बिल्कुल,
बड़ी प्यारी
तो
बात की। हसन, अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास एक शेर है मौलवी साहब का, मैं
हाँ,
अर्ज़ करूँ तो फारसी में है, उसका तर्जुमा करने की
मौलाना रूम
कोशिश।
का आप कहिए, मौलवी साहब लोग कहेंगे पता नहीं
हाँ
कौन
हाँ ये
मौलवी।
बात भी आपने
हाँ
सही है जी
बिल्कुल,
मौलाना। अच्छा, शेर यूँ है कि जी, बातिन व ज़ाहिरम थुई, मन ना मनम ना मन मनम, गायब व ज़ाहिर मन थोई मन
हिरम थोई
मा, अरे मन ना मनम ना मन मनम। अच्छा इसका तर्जुमा जो थोड़ा सा जहाँ तक मुझे समझ आई है, ये खुदा की ज़ात के बारे में जो है बात कर रहे हैं इसमें। अलबत्ते जो है शबर साहबी से भी पूछेंगे कि इसका जो है वो तर्जुमा क्या बनता है। बातिन और ज़ाहिर मन थोई, कि मेरा जो बातिन है जो नहीं नज़र आ रहा वो भी तू है और जो नज़र आ रहा है वो भी तू है। और मन ना मनम यानी मैं जो हूँ मैं नहीं हूँ,
मैं नहीं रह जाता, इसमें दरअसल ये है। और यानी खुदा से जुड़ने की ये बात दरअसल हो रही है कि जब खुदा से आदमी मुत्तसिल हो गया तो मैं रह ही नहीं जाता फिर,
सही है ठीक
और
है,
इसमें मैं जो है बिल्कुल खत्म हो जाता
खत्म
है।
हो जाता है
खुर्रम,
बिल्कुल
वक्त हम लोगों के पास
जी बिल्कुल
जैसा
ठीक
कि
है
मैंने कहा बिल्कुल खत्म हो
जी।
गया, तो हम लोग चलते हैं एक प्रोग्राम देखते हैं, और उसके बाद सैयद शब्बर अली साहब हम लोग को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ खान आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ। एक ख़ास मकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, जैसे कि दिल्ली के लिए मैंने कहा है कि इसको कभी हिंदुस्तान का छोटा बगदाद कहा जाता था, क्योंकि दिल्ली में हर कदम पर जो है कोई मकबरा, कोई कब्र, कोई मस्जिद है। इसी तरीके से एक मस्जिद पर मैं मौजूद हूँ जिसका नाम है मोट की मस्जिद। ये अफगान रूलर्स जो अफगान सुल्तान थे, पहला हिंदुस्तान का अफगान डायनेस्टी जो है उनके सुल्तान सिकंदर लोधी ने इसकी जो है तामीर कराई थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी दास्तान है, मोट की मस्जिद का नाम कैसे पड़ा वो मैं अंदर बताऊँगा जाके। पहले चलते हैं इसको अंदर से निहारते हैं कि ये कैसी लगेगी। कब शहर के बीचों बीच बनी है मस्जिद, साउथक्स जगह का नाम है, जहाँ पे बिजनेस हब है, ये बहुत सारे दफ्तर हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। उसके बीचों बीच में बनी है मस्जिद, इसका एक ख़ास मकाम है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बाहर जिक्र किया था कि इसकी एक ख़ास एक दास्तान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प है। खाली एक मोट की मस्जिद, मतलब मोट एक होता है खाने का, उसके नाम से मस्जिद होना थोड़ा सा यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट थोड़ा सा हम लोग अगर तारीख में जाएँ, तकरीबन 1517 के आसपास जब सिकंदर लोधी सुल्तान हिंदुस्तान मतलब दिल्ली के जो तख्त पर काबिज था, तो वो एक मस्जिद में जो है अपने वजीर जिसका नाम मियां भूवा था उसके साथ जो है नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज के बाद ही मियां भूवा को जो उसका वजीर था उसको जो है एक मोट का दाना मिला, तो उसने जो है तुरंत जो है उसको जो है अपने सुल्तान के सामने हाजिर किया कि हुजूर आला ये मोट का दाना मुझे जो है मिला है नमाज के दौरान, तो इसका क्या किया जाए। तो सिकंदर लोधी ने जो है उसको ऑर्डर किया कि इसको जो है आप इसको जो इसकी जो है खेती करो और इंशाल्लाह इसके इससे जो पैसा आएगा उससे जो है तुम एक मस्जिद की तामीर करो, ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा का फरमान है। ये ऐसा ही हुआ, कुछ सालों तक जो है उस एक दाने से जो है पूरी खेती की गई, उससे जो है पैसे आए और उन पैसों से जो है इस मस्जिद की तामीर कराई गई। तो आप देख सकते हैं तारीख में इसका एक ख़ास मकाम है कि खाली एक मोट के दाने से जो है इस मस्जिद को जो है तामीर कराया गया। अफगानी आर्किटेक्चर का अगर इसमें हम बात करें तो इसमें जो है लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। अंदर चलते हैं, अंदर से इसको जो है थोड़ा सा निहारते हैं हम किस तरीके से जो है ये बनी हुई है। बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है और बहुत साफ़ सुथरी है। बेशक यहाँ पे जो है नमाज नहीं होती है, उस दौरान एक टाइम था, एक वक्त था जब यहाँ पे जो है नमाज़ें हुआ करती थी, पर अभी नमाज नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर नमाज नहीं होती तो यहाँ पे कोई गंदगी है, बहुत साफ़ जगह है। जैसे कि हम लोग मस्जिदों में जो है शिरकत करते हैं, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको, उसी तरीके से ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर के एतबार से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस दास्तान में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तारीखों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे कि हम थोड़ा सा अगर ऊपर नज़र डालें, इसमें हम लोगों ने पहली जो मस्जिदें देखी हैं उसमें गुंबद थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, बट इसमें जो मेन गुंबद है उसमें वो नीचे की तरफ है, काफ़ी भरा हुआ है। इसमें अगर आगे पीछे की अगर बात करें जो इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, जो इसमें कंगूरे बने हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बीच में भी इस तरीके से जो है कंगूरे बने हुए थे एक ज़माने में, बट वक्त न्यूज़ को जो है उसके नामो निशान जो है उसमें से हटा दिए हैं। वक्त ने जो है उसके नामो निशान मिटा दिए हैं। कभी यहाँ पे बहुत अच्छी जो है कारीगरी के साथ जो है इसमें डिजाइन बनाए गए थे। अभी थोड़ा सा मैं नज़र आपकी डालूंगा ऊपर की तरफ, अभी भी यहाँ उस दौरान से लेके 16वीं सदी का है ये स्ट्रक्चर, ये इमारत 16वीं सदी की है, बट उस दौरान से यहाँ पे जो देखो कितना अच्छा अरबिक इस्लामिक कैलीग्राफी का जो है काम हुआ है, जो मुस्तकिल अभी भी मौजूद है और हम उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़र मौत की मस्जिद में। अब किबले की तरफ अगर हम रुख करें यहाँ पर, देखिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मस्जिद है और उसमें मैं जूते पहन के आ गया हूँ, बट क्या कर सकते हैं, कभी यहाँ पे नमाज नहीं होती है। किबले का रुख कभी यहाँ पे जो है इमाम जो है इमाम साहब जो है नमाजों को जो है पढ़ाया करते थे, और आज देखो कितनी अच्छी कारीगरी की गई है। इसमें लाल पत्थर है, ये पूरा का पूरा जो है ये अरबिक कैलीग्राफी है ये ऊपर।
मौलाना रूम का एक वाकया भेजा है अली नादिर साहब ने, पढ़ने का भी अभी मौका फराहम हुआ है तो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, 2 मिनट पहले उन्होंने भेजा है तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बस हम ये बताते चलेंगे इस वक्त सैयद शब्बर अली साहब हम लोगों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत?
शुक्रिया।
और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी?
अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से
चले। तो हुर्रम भाई आप गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे?
आप अगर इजाज़त दें तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।
नहीं, अगर हम नहीं दें तो आप नहीं करेंगे
जी। नहीं, आप यहाँ पर जो है असल हमारे
एंकर चलें तब तो हम इजाज़त दे देते हैं। आप भी क्या याद करेंगे?
बहरहाल जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शबर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शबर साहब बहुत बहुत खुश आमदीद आपको कहता हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत अहम दिन है आज, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का आज दिन ईरान में मनाया जा रहा है। पहले तो थोड़ा सा शख्सियत के बारे में बताएं हमें कि इनकी शख्सियत थी क्या।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद है कि नाज़रीन खैर वाफ़ियत से होंगे। और अभी जैसा कि आज हमारे दोस्तों ने स्टूडियो में बताया, जैसा कि खुर्रम साहब और हसन साहब ने, कि आज योम मौलाना जलालुद्दीन रूमी मनाया जाता है ईरान में
जी।
अगर तारीख़ के हवाले से अगर देखेंगे क्योंकि तो आज उनकी सोलार कैलेंडर से उनकी आज पैदाइश का दिन है,
ठीक है,
और तारीख़ में 30 सितंबर 1207 में उनकी विलादत सब्त हो चुकी है,
ठीक है,
यानी आज 30 सितंबर है 2013,
ठीक है।
तो तकरीबन 800 साल का कुछ अरसा गुजरा है इनकी विलादत से, और ये काफ़ी बड़े शायर और बहुत ही बड़े मशहूर, यानी कह सकते हैं कि एक अदीब और शायर गुजरे हैंगे अपने दौर के, और उनका असर अभी भी रहा है। और न सिर्फ शायर और अदीब बल्कि ये बहुत ही अपने दौर के बहुत ही बड़े आलम और फाजिल माने जाते थे।
सही।
इसीलिए कि उनके जो अशआर वगैरह जो है उसमें वो जो अल्लाह से जो मुखातिब जो कर रहे हैं, गुफ्तगू जो कर रहे हैं, वो चीज़ वाज़ह तौर पर मौजूद है।
सही।
और उससे पता चलता है कि ये कितने बड़े यानी आलम और फाजिल थे जो अल्लाह से जो गुफ्तगू या जो मुनाजात है अल्लाह से वो अपने अशार में लाए।
ठीक है।
ان کی پیدائش جیسا کہ ہمیں بتایا 1207 میں وخش میں ہوئی تھی. وخش آج کل تاجکستان کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ دراصل بلخ کا حصہ تھا. بلخ افغانستان میں ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حصے گریٹر خراسان کے حصے تھے.
ٹھیک ہے.
جو دراصل خراسان نہ کہ موجودہ خراسان جو ایران میں موجودہ پروونس ہے, بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑا علاقہ ہوتا تھا جس میں یعنی ایران بھی اس میں شامل تھا, افغانستان کا بھی حصہ شامل تھا, اور آج کل ہم تاجکستان وغیرہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حصے وہاں تک پھیلے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے. یعنی خراسان خود ایک علاقہ تھا.
ایک علاقہ تھا, بڑا علاقہ تھا. اور دراصل یہاں کے جو اقوام جو تھے یہ ایرانی الاصل تھے اور ان کی زبان فارسی تھی.
ٹھیک ہے, صحیح.
اور ان کے اشعار ہم کو جو ملتے ہیں اس دور میں وہ پورے فارسی میں ہے.
ٹھیک ہے.
اور ناظرین کو کہتا چلوں کہ مزے کی یہ چیز ہے کہ یعنی سن کے لطف آئے گا ناظرین کو کہ جو اس زمانے میں 800 سال دور پہلے جو فارسی جو بولی جاتی تھی ابھی بھی تقریباً اسی انداز سے,
ٹھیک ہے,
آج کل کے دور میں ایران میں وہی اسی
بولی جا رہی
فارسی فارسی بولی جا رہی ہے, اور کسی قسم کی اس میں زیادہ تبدیلی ہم کو نہیں دکھتی.
ٹھیک, صحیح.
یہ 10 سال کی عمر میں اپنے والد کرام کے ساتھ مہاجرت کی ہے, کیونکہ مغلوں کا حملہ شروع ہو گیا تھا, منگولس کا.
ٹھیک ہے.
یعنی جو منگولس جو ٹرائبس وغیرہ جو تھے چنگیز خان وغیرہ کا جہاں شروع ہو گیا تھا, اور یہ ان کو چھوڑ کے اپنے زادگاہ کو چھوڑ کر دمشق آنا پڑا.
صحیح.
دمشق آئے, دمشق سے پھر اس کے بعد مکہ وغیرہ میں رہے, مکہ مدینہ کی زیارت وغیرہ کر کے یہ جا کے سیٹل ہوئے انطولیہ میں.
صحیح.
انطولیہ یہ آج کل موجودہ ترکی.
ٹھیک ہے.
اور ان کو جو روم جو کہا گیا ہے اسی لیے کہ جو ترکی جو ہے وہ ایک زمانے میں ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھا.
ٹھیک ہے, صحیح.
اور وہاں پر یہ جو سلجوق حکومت جو تھی وہاں پر ان کی حکومت قائم تھی, اور وہ حکومت یعنی پرشین سلجوق ڈائناسٹی کے نام سے بھی کہا گیا ہے. دراصل وہ ترک تھے لیکن ان کی زبان ایرانی تھی,
صحیح.
فارسی تھی ان کی درباری زبان. اسی انداز پہ ہم کو اگر ہم برصغیر کی طرف بھی نظر ڈالیں تو مغلیہ دور میں بھی یا خود جنوب ہند میں دکن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو زبان یا درباری زبان فارسی ہوا کرتی تھی.
ٹھیک ہے.
مغل خود ترک تھے یا دیگر اقوام جیسا کہ یا دیگر سلاطین جو گزرے ہیں جیسا کہ تغلق ہے یا خلجی ہے, یہ بھی دراصل ترک تھے لیکن ان کی زبان فارسی تھی. اسی انداز میں ہم کو اس علاقے میں ملتا ہے کہ یہ حکمران اصل جو ترک تھے اس علاقے میں لیکن ان کی درباری زبان فارسی تھی.
صحیح.
اور یہاں پر سیٹل ہو گئے اور یہاں پر ہی رہے اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا تقریباً 1273 میں.
صحیح.
یعنی 67 ایئرس کی عمر میں.
ٹھیک ہے.
تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اشعار جو کہے ہیں
جی
یعنی اس یعنی 67 ایئرس کی عمر میں, تو یہ کافی آج تک بھی اس کے اشعار کے اثر رہا ہے.
صحیح.
اور مختلف شعراء وغیرہ اس سے تاثیر پذیر ہو کر اسی انداز میں اشعار کہیں یا ان کی مدح میں اشعار کہیں.
صحیح.
ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کیونکہ یہ عارف تھے, یہ عالم تھے, یہ فاضل تھے, اور اللہ کی عبادت کو اور قرآن کی آیات کو اور احادیث نبوی کو یہ اشعار کی اس میں لائے ہیں, اشعار کے اس میں لا کر اور مختلف قسم کے شعر وغیرہ یہ انہوں نے کہے.
شپر صاحب, دیکھنے میں ملتا ہے کہ جیسے کہ مولانا جلال الدین رومی ہو گئے, حافظ ہو گئے, یہ جو بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے نام آتے ہیں ایران کی تاریخ میں یا اس علاقے کی تاریخ میں کہیں, ان کے شعروں میں خدا کے ساتھ گفتگو بہت زیادہ ملتی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, حافظ یا مولانا جلال الدین رومی یا دیگر شعراء جو ہم کو جو دکھائی دیتے ہیں, دیکھیے یہ خاص وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ربط جو تھا معبود سے
جی,
اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس دور میں یعنی اس رابطے کو اشعار کے اس میں قلم بند کرے.
بالکل.
اور لوگوں تک پہنچائے.
ٹھیک ہے.
یعنی اگر ہم اس کے پیچھے دلیل دیکھیں گے تو شاید خود حافظ کا مشہور شعر ہے, دقیقاً شعر میرے ذہن میں نہیں ہے
جی
کہ اس کا مضمون کیا ہے, لیکن خود حافظ کہتے ہیں کہ یہ جو منصبہ یہ جو رتبہ میرے کو ملا ہے وہ شب بیداری کی وجہ سے ملا ہے جو راتوں میں میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا.
صحیح.
یعنی وہ اشعار کا مفہوم یہ ہے.
اس کا مطلب یہ صرف یہ شخصیات جو گزری ہیں صرف ان کو شاعر کہنا کافی نہیں
ہے. کافی نہیں ہے. جی ہاں, آپ دیکھتے ہیں کہ خود دیوان حافظ مختلف گھروں میں پایا جاتا ہے
جی جی.
اور لوگ اس سے یعنی اشعار کو پڑھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس اشعار کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی وغیرہ کے اس سے یعنی جڑائیں اور سنوار سکے اور مختلف قسم کے یعنی اگر اشعار میں اگر کچھ نقطے پنہان ہے اور نقطے کچھ مخفی ہے جو جس سے وہ استفادہ کر سکے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس نقطوں کو انڈر لائن کرے, اس نقطوں کو سمجھیں, اس نقطوں کو اپنی زندگی میں لیں اور اپنی زندگی کو تو صحیح راستے پہ لائیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اشعار یہ اس قسم کے جو شعرا وغیرہ گزرے ہیں یہ دراصل روحیات انسان سے انہوں نے کام رکھا ہے, یعنی کہ انسان کو جو نفس ہے انسان کی جو روح ہے اس کی کوشش کی ہے کہ اس کو اپلفٹ کر رہے ہیں,
اس کو دکھا سکے,
اس کو دکھا سکے, اس کو اونچا کر سکے. انسان کی جب روح بلند ہوتی ہے جب اللہ کی طرف جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتقال ہو جائے روح اوپر چلے نہیں, جیسا کہ اندر سے جب انسان جب تبدیلی آتی ہے کیونکہ آپ کے ہفتے کا بھی موضوع تبدیلی ہے
بالکل جی,
یعنی یہ اشعار ایسے اشعار ہے جو انسان کے وجود میں تبدیلی لا سکتی ہے, زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے
بالکل. یہ وہ یہ نا کہ پورے ایک بڑی بہت بڑی چیز کو ایک کوزے میں بند کر دینا, یعنی آپ دو مصروں میں جو ہے وہ
آپ دریا کو بند کرنے کی
بند کر دیتے ہیں بالکل, اور آپ ایسا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقتاً جو ہے بندے کو لگتا ہے بندے کی روح جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے بالکل. رشبر صاحب اس موضوع پہ آگے گفتگو کرتے رہیں گے, ہم لوگ یہاں پر چلتے ہیں ہم حسن کے پاس, دیکھتے ہیں حسن کے پاس ہمارے لیے کیا ہے.
بہت بہت شکریہ خرم. ایک تو نائلہ کاظمی نے ہمارے لیے ایک میسج بھیجی ہے 7 منٹ پہلے. السلام علیکم, ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ, اور اس ویک کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے, تبدیلی ہم سب کی زندگی میں ضروری ہے, تبدیلی لے کر ہم خود کو اور اپنے اطراف کے لوگوں اور معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. نائلہ فرام سعودی عربیہ. تو یہ انہوں نے نائلہ صاحب یا صاحبہ بہرحال آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک اور پیغام بھی انہوں نے بہت ہی اچھا بھیجا ہے اپنے علی نادر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ تبدیلی بہت اہم ہے خصوصاً زندگی میں, کیونکہ ایک ٹھہرا ہوا پانی بھی وہ تھوڑی دیر کے اندر اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم نقطہ اور بہت ہی خوبصورت نقطہ انہوں نے بتایا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میسیجز آپ کے ہم یعنی ہم اس کے منتظر ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے پروگرام صبح زندگی میں, چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے میں. جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمائی, سیستان اور بلوچستان صوبے کی کچھ ایران کے سیستان بلوچستان صوبے کی کچھ منظر اور بہت ہی خوبصورت تصاویر وہاں پہ, یعنی طرز زندگی بہت ہی ہاں
زندگی بھی بہت ہی پانی بھی ہے تو اس وجہ سے وہ بہترین علاقہ چاول کے لیے
یقیناً
بڑے خوبصورت کھیت جو ہے وہ دکھنے میں ملے. بھارت ہم لوگ حسن گفتگو کا آگے چلاتے ہیں, میں بتاتا چلوں شبر صاحب ہمارے ساتھ, شبر علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مولانا جلال الدین رومی صاحب کا دن آج ایران میں منایا جا رہا ہے, اسی سلسلے میں ہم شبر صاحب سے گفتگو کریں. شبر صاحب وقت ہمارے پاس محدود ہے, ایک بڑا ڈائریکٹ سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا ایسی شخصیات جنہوں نے ایسے شعر بولے اور ایسے شعر جن کا جن کے شعروں میں کچھ مطلب تھا کچھ پیغام تھا, ایسا نہیں کہ بس سوئے اور صبح اٹھے اور ایک شعر لکھ دیا اس کا نہ مطلب سمجھ آئے, ان چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے سیکھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے, ان لوگوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے, ان کا دن منانا کتنا ہمارے لیے اہم ہے. کیونکہ ایک چیز جو بڑی دلچسپ مجھے دیکھنے میں ملی ہے, میرے خیال میں شاید جتنا اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جتنا ایران میں مثال کے طور پہ اقبال علامہ اقبال کو اہمیت دی جاتی ہے, ان کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے, ان کا دن مثال کے طور پہ منایا جاتا ہے, جو کچھ بھی سیمینار ہوتے ہیں ایمبیسیز میں آپ مختلف جگہوں پہ دیکھ لیں, تو اتنا جو ہے ہمارے ہاں دیکھنے میں نہیں ملتا, شاید وہ ایک نام ہی رہ گیا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا, لیکن جس طرح یہاں ان کی کتابیں چھپتی ہیں ترجمے ہوتے ہیں کتنی اہمیت ہے ان لوگوں کو یاد رکھنے کی.
دیکھیے اس سے پہلے بھی میں ناظرین کو کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہنا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے, دیکھیے یہ شخصیات ایسے شخصیات ہیں جو ہماری میراث ہے, یعنی ہمارے گزشتگان جو ہمارے لیے جو چھوڑ کے گئے ہیں سرمایہ, جو ایسٹ جو چھوڑ کے گئے ہیں, وہ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ ایسٹ چھوڑنا اس کا مطلب یہ کوئی زمین ہے یا کوئی
ٹھیک ہے
پیسے وغیرہ یا یعنی آبا اجدادی ہے, صحیح ہے کہ وہ بھی ایک معنی
وراثت
ہے لیکن یہ بھی تو ہماری میراث ہے.
جی
یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود جیسا کہ آپ جو یہ یعنی بزرگوں کا جو نام جو لیا ہے جیسا کہ علامہ اقبال لاہوری ہے
جی
یا حافظ या खुद जलालुद्दीन रूमी है या
जी
सादी है या हम तो दीगर शुआरा जैसा गुजरे हैं, जैसा कि खुद गालिब
जी
है
बिल्कुल
बरसग़ीर में या दीगर शुआरा जैसा कि अमीर खुसरो दहलवी है,
बिल्कुल
इनके जो कारनामे हैं, इनके जो काम वगैरह जो ये छोड़ के गए हैं या इनके जो अदा और किरदार है, ये हमारे लिए सरमाया है, यानी ये हमारी मीरास है
सही
और इसको हमको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इसको हमको हिफ्ज़ करना चाहिए।
सही
इसीलिए कि इस चीज़ में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी फलाह और बहबूदी के लिए वो है,
हमारी जिंदगी के फलाह
हमारी
बहबूद
ज़िंदगी की फलाह और बहबूदी के लिए
बहुत
है।
अहम
इससे पढ़ना, इससे यानी ये अशआर को पढ़ना या अशआर को समझना, ये इंसान के जहन में ऐसी तब्दीली लाती है कि इंसान का जहन रोशन होता है, इंसान बेहतर समझ सकता है अपने अतराफ के माहौल को, अपने एटमॉस्फेयर को। उसके अलावा इस अशआर में जो अल्लाह ताला से इनकी जो गुफ्तगू है,
गुफ्तगू है बिल्कुल
यानी जो खुद यानी ऐसे अशआर है जो इससे इंसान समझ सकता है कि मसलन अल्लाह ताला या अल्लाह सुबहाना ताला की किसी हमद सना करनी चाहिए।
ठीक
मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल लाहौरी के आप जैसा जो अशआर
जी
वाला जिनके बारे में आप जो कहें, अल्लामा इकबाल लाहौरी खुद मुतासर थे यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी से,
अच्छा
और ये खुद अपने अशआर वगैरह में कहें। उसके अलावा हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल के जो अशआर है
जी
आजकल के जवानों के लिए अगर वो पढ़ें तो ऐसा
बिल्कुल
दिखेगा कि वो उनके यानी वाकई उनके हालात हाजरा पे वो अल्लामा
बिल्कुल
इकबाल बयान
ऐसे ही
फरमाना और ये चीज़ होनी चाहिए और
बिल्कुल
इंसान में बेदारी आनी
इसमें
चाहिए।
शक ही नहीं बिल्कुल सही
या अगर हम हाफिज़ के अशआर पढ़ें तो हाफिज़ और जो हालात को जो बयान जो कर रहे हैं और अल्लाह ताला से जो राबता वगैरह के बारे में
जी
या मौजूदा अपनी ज़िंदगी पे उसका जो असर जो दिखता है उसके बारे में हम देखते हैं कि ऐसा दिख रहा है कि खुली हुई किताब है।
सही शबर साहब,
जी
इन लोगों की शख्सियत या इन लोगों के शेरों को पढ़ने से क्या आपको लगता है कि मारिफत खुदा या ज़िंदगी को समझने में हमें मदद मिली? टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास
जी
मुख्तर।
मदद भी मिलेगी ये अशार वगैरह पढ़ने से, क्यों नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इनके अशार वगैरह यानी ऐसे हैं कि क्योंकि ये अल्लाह के हमदो सना में कहे गए हैं
सही है
और अहादीस वगैरह का सहारा लेते हुए अहादीस नबवी को इन्होंने अशार में इन्होंने लाया और
तर्जुम
खुद
किया
अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की हमदो सना किए हैं इसमें
सही
और अहले बैत अलैहिस्सलाम को मारिफी किए हैं और
सही
बताए हैं कि दुनिया को क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम के
ठीक
क्या होते हैं और उनको जो ये बिल्कुल ये मदद करता है
मदद
अपने।
बहुत शुक्रिया शबर
जी
साहब। चलना है हमें यहाँ पर हसन के पास, इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा फिर आएंगे
जी
गुफ्तगू की तरफ। जी हसन
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। अली नादिर साहब ने भी एक और सवाल भेजा है, बहुत ही यानी अच्छा सवाल है, इसके
सही
बारे में मैं थोड़ा यानी तमहीद भी उसके बाद मैं
जी ज़रूर
बांधूंगा। उन्होंने कहा है कि शब्बर साहब सवाल है कि रूमी का नाम आते ही रक्स जो उनसे मंसूब है जहन में आता है, उसकी वजह क्या है? इसके बारे में आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ शब्बर साहब की बात की तायीद में, और बहुत ही अहम बात है। आजकल अगर आप तुर्की जाएंगे, आज से मतलब यानी गुज़श्ता शायद 50 साल 60 साल, इस
जी
दौरान जो लोग तुर्की गए हैं वहाँ पे उन्होंने देखा है कि बहरहाल हम जो फारसी यानी भी समझते हैं या उर्दू भी समझते हैं या पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, वहाँ जाके वो अशार पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद जो वहाँ के मकामी बाशिंदे हैं जो तुर्क हैं वो आके हसरत से आपको देखते हैं। यानी अगर वहाँ पे जब से यानी रस्मुलख़त की तब्दीली हुई, बहरहाल उसके पीछे बहुत ही बड़ी सियासी साजिश थी, लेकिन हुआ क्या कि उसकी वजह से लोग अपने मीरास जो है उसको उन्होंने खो दिया, यानी शायद कह सकते हैं एक साजिश के तहत उनके हाथ से वो मीरास छीन ली गई। आज अगर आप जाके वहाँ पे वो फारसी अशार या तुर्की में लिखे वो अशार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और बाकी खुद तुर्क जो हैं वो बहुत ही हसरत से आप देखें आपको आकर देखेंगे। तो न जानना अपनी मीरास, न पहचानना अपने मीरास को, उसका नतीजा ये होता है कि हसरत के अलावा कुछ और नहीं रह जाता। और चलें मौजू बिल्कुल तब्दील हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही अहम इस लिहाज से है कि आजकल के हम लोग की ज़िंदगी जो चल रही है उसके हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो टेलीफोन, मेरे लिए पुराना काफ़ी टेलीफोन है, खूबसूरत सा, एक ज़माने में आपको याद हुआ है 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, वहाँ बच्चों की तफरी का भी सामान होता था, कम से कम मेरी मेरी तो था। और इसमें लेकिन अब जो है टेलीफोन की शक्ल काफ़ी तब्दील हो गई है, तो टेलीफोन में जो तब्दीलियां आई हैं वो बायस बनी हैं कि इंसान ज़्यादा बेवकूफ़ और टेलीफोन ज़्यादा स्मार्ट बन जाए। और स्मार्टफोन जैसे कहा जाता है आजकल बहुत ही हर जगह पाए जाते हैं, हर जहाँ पे आप देखें तो यकीनन कोई ना कोई उसको इस्तेमाल कर रहा होता है और उसको उससे फ़ायदा उठा रहा होता है या बहरहाल दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इस सिलसिले में मैं ये बताता चलूं, यानी ताज़ा तरीन तहकीक़ात इस सिलसिले में कही जाती हैं कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है वो सिर्फ 20% उनमें से उसको स्मार्टफोन या ये नहीं कह सकते हैं कि फ़ोन करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो हैं उनमें से कहा जाता है तकरीबन 60% लोग जो हैं सबसे ज़्यादा ये जो मिकदार है वो अपने ईमेल और सोशल नेटवर्क चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन को। और इसके अलावा देखा गया है कि यानी हर चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होता है फ़ोन करने के अलावा, यानी खुद फ़ोन का किरदार जो है वो किनारे चला गया है और जो मरकज़ी किरदार है वो बाकी एप्लीकेशंस या उसमें फ़ीचर्स जो हैं उसके हो गए हैं। तो इस सिलसिले में कहा जाता है ये अगले 20 साल में हो सकता है कि फ़ोन का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, बल्कि बिल गेट्स ने अभी थोड़े दिन पहले एक बात कही थी कि 10 साल अगले 10 साल में जो मौजूदा टीवीज़ हैं LCD LED पता नहीं क्या क्या जो आ रहे हैं प्लाज्मा और ये सब, इसका ऐसा जो है कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म होगा कि आप 10 साल के बाद हंसेंगे इन चीज़ों पर। तो यकीनन फ़ोन के साथ भी मेरे ख्याल में यही होने जा रहा है। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और कुछ मज़ेदार चीज़ें नाश्ते के हवाले से बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। चलें फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो इस हवाले से है कि उसको कहते हैं खुफिया भूख, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही दो नुक्ते हैं, बहुत ही अहम हैं। खुफिया भूख ये होती है कि आदमी को जो जिस चीज़ की बदन की ज़रूरत है वो उसको पूरा ना कर सके, उस वक्त महसूस नहीं होता लेकिन दूसरी शक्लों में सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा अफसरदगी जिसे कहा जाता है आप में मौजूद है और आपकी अजीब हालत हो रही है। कहा जाता है कि ये यानी उसके नफसियाती मसाइल जितने हैं वो अलग, ये बहुत ज़्यादा उस खाने पर या वो जो बहरहाल ग़िज़ाई मादा आपके बदन में पहुंच रहा है उससे मुनहसर है कि आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। देखा गया है कि ख़ुसूसन ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा होती है, ये डिप्रेशन का मसला जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी असल वजह ये होती है कि विटामिन डी की कमी। और विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें ख़वातीन ज़्यादा घर में रहती हैं तो विटामिन डी उनको सूरज के ज़रिए नहीं पहुँचती। काम ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बहरहाल जिन चीज़ों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं वो इस्तेमाल करें। और एक और काम जो यानी मिसाल के तौर पर ये सारे आपके चीज़ें सामने बीन्स हैं, पनीर है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडे की जर्दी है अलग से नहीं बहरहाल साथ में आप पूरा इस्तेमाल करो, और मछली, ये बहुत ही विटामिन डी का ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ज़खीरा है। एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अहम है और हम लोगों को पता नहीं चलता, आँखें कमज़ोर हो रही हैं, दिख नहीं रहा है कुछ और समझते हैं कि बस भाई आंखें तो हमारी गईं, लेकिन इसमें देखा गया है विटामिन ए की कमी यहाँ पर ख़ुद को दिखाती है। तो जिन चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा है वो आप कोशिश करें वो सब ज़्यादा लें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल अभी जो चीज़ें मेरे सामने गोश्त, वैसे गोश्त भी बहरहाल मुनासिब मकदार में लें, और अंडा, मुख्तलिफ़ डेयरी प्रोडक्ट, सब्ज़ियाँ, फल, खुसूसन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे देखा है आड़ू या इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह के फल जो होते हैं जो सुर्ख रंग के होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो बहुत बेहतरीन है विटामिन ए के लिए और आपके बदन के लिए भी जो मुफीद हैं वो अपनी जगह पर, साथ की जो बीमारियां होती हैं वो उसको ख़त्म कर देती हैं। वाइट आयरन की कमी जो है आप कोशिश करें मुख्तलिफ खानों के ज़रिए पूरी करें उसको, क्योंकि आयरन ख़ुद एक जहरीला मादा होता है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ गोलियां लेनी शुरू कर दी तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। चलते हैं खुर्रम के पास, और एक चीज़ जो मैं खुर्रम भाई वही वो बताना चाह रहा हूँ शब्बर अली साहब के उसी हवाले से कि रक्स समा के बारे में उन्होंने पूछा था, वैसे मेरे ख्याल में मौलाना रूम से वो मंसूब नहीं है बल्कि वो तसव्वुफ से
देखिए
मंसूब है।
दरअसल देखिए अगर आप अभी आप लोगों की जो गुफ्तगु जो तब्दीली के बारे में है
जी,
दरअसल ये जो रक्स सूफी या सूफी डांस वगैरह जो जिसे कहा गया है ये दरअसल सूफी टीचिंग्स की जिसमें तब्दीली जो आ गई है
ठीक है,
उसको जिसको बिगाड़ दिया है ये इसमें चीज़ें आ गए हैं। जैसा कि अगर मैं नहीं समझता कि जो मनफी तब्दीलियाँ आई, मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें खुद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो जुड़ी हुई हैं या नहीं, ना कि जुड़ी हुई हैं बल्कि उनकी जो टीचिंग्स वगैरह है इससे वो है। यानी अगर नाचना या सिर्फ और सिर्फ यानी एक यानी जो गोल गोल फिरना दायरे में घूमना और सिर्फ और ये यानी ये दरअसल अल्लाह की इबादत नहीं, अल्लाह की इबादत अल्लाह की हमद सना से होती है, जिसमें हम मुख्तलिफ जगहों पर खुद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो अशार जो है उसमें हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जो मशहूर और मारूफ किताब है वो जिस उसे मस्तवी कहा गया है,
सही
यानी मसनवी मानवी,
ठीक
और ये दरअसल 6 जिल्दों में है,
जी
6 हिस्सों में है, ये इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, ये रेनॉल्ड निकोलसन की किताब है, ये दिल्ली से छपी हुई है,
उसके ऊपर
इसके ऊपर अगर जूम कर दें तो काफी शुक्रिया होगा, काफी पुरानी तो नहीं है लेकिन इसकी जो छाप वगैरह आई, और अंग्रेजी में निकोलसन ने मौलाना रूमी के अशआर वगैरह को तर्जुमा किया था और बाकायदा कमेंट्री के साथ इसको पेश किया है।
सही है।
और ये नाज़रीन अगर इसको खरीदना चाह रहे हैं जो हमारे बरसगर में खुसूसन हिंदुस्तान में, तो ये दिल्ली से ये किताब को खरीद सकते हैं। और ये निकोलसन ने 8 वॉल्यूम्स में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी को इसमें लाया है।
सही।
दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए खुद मसनवी मानवी, मानवी यानी एक मानवी चीज जो यानी जो स्पिरिचुअल हो
जी।
उससे है, और ये किताब 6 हिस्सों में है, जो पहला और दूसरा हिस्सा नफ्स के ऊपर है, यानी अपने जो यानी और शैतान के हरबे वगैरह जो नफ्स पे जो
अच्छा।
हमेशा नफ्स को गुमराह करना चाहता है। दूसरा हिस्सा यानी सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ हिस्सा जो है इस यानी मसनवी का, ये हज़रत मूसा और क़ुरान में जो दीगर जो क़ुरान के जो दास्तान वगैरह जो आए हैं पैगंबरों के बारे में, उसके बारे में है। और पांचवा और छठा हिस्सा जो इंसान को चाहिए कि अपनी ज़मीनी यानी दुनियावी जिस्म को छोड़कर अल्लाह ताला से मुल्लक हो, यानी अपनी नफ्स को इतना बुलंद करे कि अल्लाह ताला से वो जुड़ जाए, तो उसके बारे में है। यानी बाकायदा आप इसके टीचिंग्स में देखते हैं कि या ये जो इनकी जो तालीफात में आप देखते हैं कि इसमें ना कोई रक्स का जिक्र है ना कुछ ना क्या, और बाकायदा इसमें अल्लाह ताला के सुभान व तआला की हम्द सना है और मुख्तलिफ चीज़ों से समझाए कि कैसी करनी चाहिए।
सही। अगर कहीं ना कहीं कोई अगर कोई उसमें ऐसी बात होती तो कहीं कहीं जरूर दिखने में पढ़ने में मिलता हमें,
या हमको या खुद मौरखी लिखते कि मौलाना ये काम अंजाम दे रहे हैं या ऐसे काम हो रहा है।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया छपर साहब, वक्त की महदूदियत, मौजू बहुत बड़ा है, हम चाहते थे कि आप, मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह जो है पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे लेकिन शायद ये 1% भी जो है बात नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया छपर साहब।
सिर्फ इतना नाज़रीन कहता चलूँ कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो हम असर जो बहुत ही मशहूर मारूफ सूफी जो शख्स गुजरे जिसकी जो किताब वगैरह भी मारूफ है वो है शम्स तबरेज़, और मौलाना रूमी काफ़ी इनसे मुतासर थे और दीवान शम्स तबरेज़ भी इनके नाम से इन्होंने लिखा है।
सही है।
और नाज़रीन को मैं कहता चलूँ कि अगर नाज़रीन को ये सहूलत हासिल है क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है,
ठीक है,
और ये मुख्तलिफ़ किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ें समझें और दीगरान को दूसरों तक ये इल्म वगैरह पहुँचाने की कोशिश करें ताकि हमारी जो मीरास है हम इसको हिफ्ज कर सकें, ना कि हमारा भी वो हशर होगा जो हसर ने कहा है कि
बिल्कुल
तुर्की में जो हशर है जो हसरत से बाद में ये हमारी जो
बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और बहुत ही अहम मालूमात हमारे नाज़रीन को और हमें फराहम की। नाज़रीन चलते हैं, एक आप वीडियो क्लिप देखिए, डॉक्टर मोहम्मद इस्फहानी ने बहरहाल वो तैयार किया, आप देखिए उसके बाद आपकी खिदमत में फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। बरकत के नाम की एक वीडियो क्लिप आपने मुलाहिज़ा फरमाई और एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा वो इस हवाले से है कि तब्दीली बाज़ वक्त जो है वो यानी हमेशा अच्छी होती है लेकिन बाज़ वक्त उसके असरात भी बुरे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर गौतम बुद्ध बुद्धा जो है वो उन्होंने उनकी किताबों में जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि बुद्ध की इबादत न किया करो, बुद्ध की परस्तिश न किया करो,
ठीक है,
लेकिन उठा के उन्हीं का बुद्ध बना दिया गया।
अच्छा,
और बज़ाहिर उनके मानने वाले वो जाके उनकी इबादत करते हैं और कहते हैं कि नहीं क्योंकि खुदा नहीं दिखता तो इनके हम करते हैं, हालांकि ये खुद गौतम बुद्ध के जितनी उन्होंने जो चीज़ें कही थी उसके बरखिलाफ़ है। यानी यहाँ पर तब्दीली जो है मुसबत नहीं होती इसके हवाले से इंशाल्लाह, और वैसे बहुत ही इसके हवाले से भी आप नाज़रीन आपके भी हम ख्यालात के मुंतजर रहेंगे। इस वक्त एक कॉलर मौजूद है हम लोगों के पास, उनसे हम लोग गुफ्तगू करते हैं। मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप?
बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
जी मैं आबिदा जैदी पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। आपका मौजू बड़ा अच्छा है तब्दीली का,
बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
मेरा ख्याल ये है कि तब्दीली तो इंसान की फितरत के अंदर है और जब इंसान पैदा होता है तो भी उसमें बड़ी तब्दीलियां आती हैं, हर दिन हर महीने हर साल तब्दील होते होते बचपना जवानी बुढ़ापा तो, लेकिन ये है कि आजकल के जमाने में हम तब्दीलियों के कितने आदी हो गए। अभी आपने फोन की बात की थी, मैं इतनी आदी हो गई हूँ कॉर्डलेस फोन की कि अब कॉर्डलेस फोन के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ कॉर्डलेस फोन होता है तो मैं आराम से बात कर सकती हूँ। तनव्वो और तब्दीली तब्दीली इंसानी फितरत का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर इंसान तब्दीली पसंद ना होता तो आज इतनी तरक्की ना करता जितनी तरक्की इंसान ने कर ली है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आजकल की जिंदगी में कि अगर हम लोग उसको तब्दील न किया करें, खुसन हम लोगों की तर्ज जिंदगी, जो वक्त हम लोगों के पास बहुत कम है, तो हम आपसे बहुत मुख्तसर से जवाब चाहेंगे। वो ये है कि मिसाल के तौर पर सुबह को उठते ही हम लोग कोशिश करते हैं जो दूसरे दिन हमने गुज़श्ता दिन जो गलतियां की हैं उनको हम ठीक करें, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तब्दील करें अपनी तर्ज जिंदगी को?
बिल्कुल बिल्कुल, हर आने वाले दिन से हम पिछले गुजरे हुए दिन के बारे में जो है वो तो सोचते हैं कि वाकई कल हमने ये गलती की, या पिछले साल हमने फला तकरीब में ये चीजें नहीं की थी, इस साल इंशाल्लाह हम जरूर ये चीजें करेंगे। तो ये खुद एहतसाबी, तो ये तो मौला का फरमान है कि अपना एहतसाब करो और अपनी गलतियों से सीखो, और यकीनन हम सीखते हैं अपनी गलतियों से, तभी तो चीजें अच्छी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। अगर हम अपनी गलतियों से ना सीखें या एहतसाब ना करें तो उस वक्त तक तरक्की मुमकिन नहीं है।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका सैयदा आबदा जैदी साहिबा, जो बहरहाल हम लोगों के बहुत ही यानी अच्छे व्यूअर्स में उनका शुमार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया, जीते रहो, जीते रहो।
बहुत शुक्रिया।
एक चीज़ खुर्रम जो मैं एक और बताना चाह रहा था मौलाना रूम के हवाले से, लेकिन उनसे बहरा मंसूब नहीं है, लेकिन आपने एक सवाल पूछा था कि सैयद शब्बर अली साहब से कि अगर इसमें हम तब्दीली लाना चाहें अपनी ज़िंदगी में, तो ये वो माफ़ कीजिएगा कि अगर उनको हम वो बनाना चाहें एक आइडियल के तौर पर कैसे बनाएं,
ठीक है।
इसमें बाज़ लोग कहते हैं मुल्ला सदरा का वाकया है, बहुत ही बड़े कह सकते हैं फ़िलासफ़र और इस्लामी इल्म के माहिर थे, इस्लामी उमूर के माहिर थे। उनसे पूछा गया कि उनके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं, माफ़ कीजिए मीर दामाद की बात है, उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो मीर दामाद ने कहा कि तुम जो कहीं कुछ नहीं बन पाओगे, उसकी वजह ये है कि मैं बनना चाह रहा था हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरह और बना ये, तो जब मैं तुम मुझ जैसा बनना चाहते हो तो आगे जाके तुम क्या बनोगे वो उसका अल्लाह ही आलम है, और वो हम बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि तुम कुछ बन पाओगे।
बहुत खूबसूरत बात की आपने। जी बिल्कुल ठीक है आपने कहा। सर मैं ये बताते हूँ, वक्त हमारे पास महदूद है, डॉक्टर ज़ैनब मेहदी हमारे साथ कल स्टूडियो में मौजूद होंगी, और हादसात बच्चों के साथ जो हादसात पेश आते हैं कि वो कोई भी चीज़ मुँह में डाल देते हैं और उसकी वजह से जो हादसात पेश आते हैं उसके बारे में बात होगी हसन
इंशाल्लाह। और हम लोग का फेसबुक पेज मत भूलिएगा आप लोग। और बहरहाल ये हफ़्ता मौजू अभी चल रहा है हम लोगों का तब्दीली का तर्ज ज़िंदगी में, और इस हवाले से आप भी अपने यानी जितने आपके ख्यालात हैं उसका इजहार करिएगा फेसबुक पेज पर हम लोगों के।
मैं एक चीज़ हसन कहते जाऊँ उसके बाद ख़त्म करते हैं हम प्रोग्राम को इंशाल्लाह, वो ये कि ये जो शुरा अदीब और जो फ़िलासफ़र हमारी तारीख में गुजरे हैं ये हमारी मीरास का एक हिस्सा हैं, उनको पढ़ना, इनको जानना, इनको
उनके रास्ते को देखना,
बिल्कुल
उस रास्ते पर वो लोग चलें, उस रास्ते पर हम लोग चलना शुरू करें तो यकीनन हम लोग कामयाब होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे सईद हसन जैदी और
जी इजाज़त दीजिए।